ये आकाशवाणी है। अब आप मुद्रता से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर जाकर उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। विपक्षी गठबंधन INDIA ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली की। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने महारैली को विफल बताया है। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के विदेशी मूल के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET में आवेदन करने की तारीख 5 अप्रैल तक बढ़ा दी है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। वयोवृद्ध नेता श्री आडवाणी के आवास पर जाकर उन्हें यह सम्मान दिया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और श्री आडवाणी के परिवारजन उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एक सांसद के रूप में श्री आडवाणी के संवाद में विश्वास ने संसदीय परंपराओं को समृद्ध किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के रूप में श्री आडवाणी ने हमेशा राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा, जिससे उन्होंने लोगों से राजनीति से ऊपर उठकर सम्मान और प्रशंसा हासिल की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने को देखना बहुत विशेष अवसर था। उन्होंने कहा कि श्री आडवाणी को यह सम्मान प्रदान करना देश की प्रगति में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक सेवा के प्रति श्री आडवाणी का समर्पण और आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि उनके लिए गर्व की बात है कि उन्हें कई दशकों तक श्री आडवाणी के निकट रहकर काम करने का अवसर मिला। विपक्षी गठबंधन INDIA ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली आयोजित की। यह रैली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन के लिए की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों को धमकाने के लिए संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस चुनाव में किसी प्रकार की बराबरी नहीं है। श्री खड़गे ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए है और विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। पिछले साल जून में पटना में गठबंधन की स्थापना के बाद से INDIA ब्लॉक नेताओं की यह पहली सार्वजनिक बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यह लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं बल्कि परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। राजधानी के रामलीला मैदान में विपक्ष द्वारा आज आयोजित महारैली को भाजपा ने विफल बताया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि INDIA गठबंधन दिल्ली में अपनी पहली रैली में लोगों के बीच छाप छोड़ने में विफल रहा है, क्योंकि दिल्लीवासियों ने दो मुख्य साझेदारों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रैली आह्वान को खारिज कर दिया। श्री सचदेवा ने कहा कि इस रैली में कुछ हजार लोगों की ही भीड़ थी, जिनमें से अधिकांश पंजाब और हरियाणा से लाए गए थे। श्री सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और विधायकों को रैली में शामिल होने के लिए लोगों को जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वे रैली के लिए 6,100 लोग भी जुटाने में असफल रहे। श्री सचदेवा का कहना है कि आज की रैली की विफलता ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंत को स्पष्ट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मेरठ से पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। श्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं है बल्कि यह भारत को विकसित राष्ट्र तथा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि जब भारत दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था तब गरीबी की दर बढ़ रही थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना तो 25 करोड़ से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक गरीबी से बाहर निकाल लिया गया। उन्होंने कहा कि जब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा और मध्यम वर्ग देश की प्रगति को गति देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विनिर्माण क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश कर रहा है।
आज भारत में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज हर सेक्टर में नौजवानों के लिए अनगिनत नए अवसर बन रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वे देश को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी कारण बड़े भ्रष्ट लोग सलाखों के पीछे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता इस अवसर पर उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए राजधानी के छतरपुर पहाड़ी क्षेत्र से विदेशी मूल के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी नाइजीरिया मूल का है। पुलिस ने आरोपी के पास से 71 ग्राम से अधिक मात्रा में उच्च गुणवत्ता की हेरोइन बरामद की है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को महारैली क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और इनके पास से 7 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उनकी आपूर्ति करते थे। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक पोर्टल और इसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्था के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया है। आरोप है कि न्यूज पोर्टल को चीन के पक्ष में प्रचार के लिए धनराशि मिली। लगभग 9000 पृष्ठ के आरोप पत्र में जांच के दौरान विभिन्न छापों में जब्त 480 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित जानकारी है। पुरकायस्था के खिलाफ कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं बताने से संबंधित आरोप भी हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने 16 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की है। न्यूज क्लिक के संस्थापक को पिछले वर्ष 3 अक्टूबर को कंपनी के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन पर अमरीका के जरिए चीन से अवैध रूप से धनराशि लेने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई अपने स्थापना दिवस के अवसर पर कल 20वें डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान का आयोजन करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान देंगे। इस वर्ष की थीम है उन्नत आपराधिक न्याय प्रक्रिया के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। मुख्य न्यायाधीश इस अवसर पर सीबीआई अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्रदान करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। इसका उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों की छानबीन करना नहीं बल्कि वित्तीय कानूनों के उल्लंघन और गंभीर अपराधों की भी जांच करना है। 6 वर्ष से भी अधिक की सेवा अवधि में सीबीआई देश की एक प्रमुख प्रमुख जांच एजेंसी के रूप में उभरी है। यह भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कानून प्रवर्तन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समन्वय भी उपलब्ध कराती है। सीबीआई अपने संस्थापक निदेशक के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए वर्ष 2000 से डीपी कोहली स्मारक व्याख्यानमाला का आयोजन करती रही है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर जाकर उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया है। विपक्षी गठबंधन INDIA ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली की। भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने महारैली को विफल बताया है। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के विदेशी मूल के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET में आवेदन करने की तिथि 5 अप्रैल तक बढ़ा दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET में आवेदन करने की तिथि को 5 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। अब छात्र 5 अप्रैल तक रात 9:50 तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिले की प्रक्रिया के लिए छात्रों को 3 चरणों का पालन करना होगा। पहले चरण के तहत छात्रों को CUET के पोर्टल पर नामांकन करना होगा और निर्धारित फीस भरनी होगी। नामांकन के पश्चात छात्र पोर्टल पर मौजूद विश्वविद्यालयों में अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल में आज 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में कुल 13,705 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय परिसर और अन्य स्थानों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पारदर्शी परीक्षा के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर इकबाल हुसैन और विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलसचिव मोहम्मद हदीस लारी ने अन्य अधिकारियों के साथ परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह उर्फ चीकू के परिजनों से 17 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल परिसंपत्ति जब्त की है। जब्त की गई परिसंपत्तियां हरियाणा के नारनौल और राजस्थान के जयपुर में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सुरेंद्र सिंह और अन्य के विरुद्ध अपहरण, हत्या और फिरौती के आरोप में हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की। जांच से खुलासा हुआ है कि सुरेंद्र सिंह अपने गिरोह के सदस्यों के जरिए एक अन्य माफिया लॉरेंस बिश्नोई के काले धन का प्रबंधन करता है और अपने परिजनों तथा रिश्तेदारों के नाम पर परिसंपत्तियां खरीदता है। प्रवर्तन निदेशालय ने कल दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता कैलाश गहलोत से 5 घंटे तक पूछताछ की। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में यह पूछताछ की गई। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि उन्होंने एजेंसी के सभी सवालों के जवाब दिए हैं और आगे भी जांच में सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि यह प्रवर्तन निदेशालय का दूसरा समन था क्योंकि लगभग एक महीने पहले दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के कारण वे पहले समन पर उपस्थित नहीं हो पाए थे। इस बीच आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि पार्टी के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1974 में कच्चा थेवु द्वीप श्रीलंका को सौंपने पर कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कांग्रेस की 75 वर्षों की कार्यप्रणाली देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रहित को कमजोर करने की रही है। प्रधानमंत्री की यह प्रतिक्रिया तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख के अन्नामलाई की सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कच्चा थेवु द्वीप के बारे में एकत्र जानकारी के बाद आई है। श्री मोदी ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि किस तरह कांग्रेस ने बड़ी ही आसानी से कच्चा थेवु द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। राजधानी में आज मौसम साफ रहा। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहते हुए 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहते हुए 21.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर जाकर उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। विपक्षी गठबंधन INDIA ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली की। भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने महारैली को विफल बताया है। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के विदेशी मूल के एक नागरिक को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।